सिंहासन बत्तीसी।
आइए सुने आठवीं पुतली पुष्पवती की सुनाई कथा।
राजा विक्रमादित्य अद्भुत कला पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को तरह तरह से सजाने का शौक था। वे कलाकृतियों का मूल्य आंककर कलाकार को मुंह मांगा दाम देते थे। एक दिन वे अपने दरबारियों के बीच बैठे ही थे कि किसी ने खबर दी कि एक आदमी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा ने देखना चाहा कि आखिर उस काठ के घोड़े की विशेषता क्या है। नौकर के साथ वह आदमी दरबार में आया। अपने साथ वह ऐसा काठ का घोड़ा लाया जिसकी कलाकृति देखते ही बनती थी। एकदम जीवित मालूम पड़ता था वह। बहुत गौर से देखने पर ही पता चलता था कि घोड़ा दरअसल लकड़ी का है। विक्रम ने उस आदमी से घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया कि महाराज, घोड़ा अति तीव्र गति से जल, थल और नभ तीनों में विचरण कर सकता है। घोड़े के दाम के बारे में पूछने पर कलाकार ने बताया कि यह उसकी पूरे जीवन भर की मेहनत का फल है, इसलिए वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में तो उसे कतई नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने वह घोड़ा खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर घोड़े को उठाकर दिखाने लगा और उसके कलपुर्जों के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसके संचालन की सारी विधि समझकर विक्रम ने घोड़ा अपने अश्वागार में रखवा दिया। कुछ दिन बीत गए। एक रोज अपने आदमियों के साथ राजा शिकार को निकले तो खुद उसी घोड़े पर सवार थे। कलपुर्जों को दबाने पर उसकी तेजी इतनी बढ़ गई कि राजा को मजा ही आ गया। वे भूल गए कि आखेट के लिए वे अकेले नहीं निकले हैं। राजा अपनी टोली से बिछड़कर बहुत दूर निकल गए। उन्होंने घोड़े को हवा में उड़ाने के लिए उसके दूसरे कलपुर्जों को दबाया तो उसकी गति हवा में इतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना ही मुश्किल जान पड़ा। उन्होंने उसे जमीन पर उतारना चाहा तो वह उसी तीव्रता से उतरा और एक घने पेड़ की शाखाओं से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा बिल्कुल अकेले थे। वे इधर उधर भटक रहे थे, तभी सामने एक बंदरिया कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक बंदरिया उनकी आंखों से ओझल हो गई थी। राजा को भूख लगी थी और वे थके भी हुए थे, तो उन्होंने वृक्षों पर लगे फल तोड़े, अपनी भूख मिटाई और एक पेड़ पर चढ़कर आराम से लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ अपनी कुटिया में ले गया। वहां रखे 2 घड़ों के बीच बंदरिया को बैठने का इशारा किया। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया के ऊपर छींटे मारे। आश्चर्यजनक तरीके से बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया। जब सन्यासी खा चुका तो उसके पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लिया, राजकुमारी पर छींटे मारे, राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लिए सन्यासी कुटिया से बाहर आया। बंदरिया को स्वतंत्र विचरण के लिए वन में छोड़ स्वयं वन में ही चला गया। कुछ समय बाद बंदरिया को लेकर विक्रम कुटिया में आए और पहले घड़े से पानी लेकर बंदरिया को राजकुमारी में बदला। राजकुमारी बनते ही उसने महाराज को बताया कि मैं कामदेव और एक अप्सरा की संतान हूँ। एक मर्तबा मैंने शिकार खेलते हुए एक बाण मृग की ओर निशाना लगाकर छोड़ा। वह बाण मृग को ना लगकर एक साधु की बांह को भेद गया। दर्द से कराहते हुए साधु ने मुझे शाप दिया कि बंदरिया बनकर मुझे साधु की ही सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ है मुनिवर, तो उन्होंने पसीज कर शाप से मुक्ति का रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें शाप से मुक्ति दिलाएंगे और तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे। वह भी तब जब वह साधु जिसकी तुम सेवा कर रही होगी तुम्हें कोई चीज उपहार में देंगे। मैं आपको देखते ही समझ गई थी कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं। अब साधु के लौटने पर मैं उनसे एक उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वरण करेंगे। विक्रम ने ये सब जानकर पानी के छींटे डालकर उसे फिर बंदरिया बना दिया। कुछ समय बाद साधु कुटिया में आए। उन्होंने बंदरिया को राजकुमारी में बदला। राजकुमारी ने उनसे कोई उपहार देने की इच्छा व्यक्त की। साधु ने हवा में हाथ लहराया तो उनके हाथ में एक खिला हुआ कमल आ गया। उन्होंने कहा यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है कि राजा विक्रमादित्य उसके जीवन में आ पहुंचे हैं, इसलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। साधु ने उसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह श्राप मुक्त हो चुकी थी। कुछ समय बाद विक्रम ने राजकुमारी को लेकर दोनों वैतालों का स्मरण किया। दोनों वैताल विक्रम और राजकुमारी को नगर की सीमा तक पहुंचाकर गायब हो गए। नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को प्राप्त करने के लिए मानो मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को तुरंत देकर उसे संतुष्ट किया। फिर महल पहुंचकर अपना राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। सिपाहियों ने बताया कि उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बनाया गया है। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला हुआ कमल दिया था और उसी कमल से ये सारे रत्नों से प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने ये सब जानकर सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए खूब डांटा और वे सारे रत्न एक अच्छे खासे मूल्य पर स्वयं ही खरीद लिए। वह आदमी संतुष्ट होकर राजा विक्रमादित्य को दुआएं देता हुआ दरबार से खुशी खुशी विदा हुआ।
आप सुन रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की कथाएं। ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।